नमस्कार, प्रिंट पॉड में आपका स्वागत है। मैं शिव पांडे आज पढ़ रहा हूं अनुसार रवि सूद का आर्टिकल, जिसमें वो बता रहे हैं कि कैसे धार्मिक विवादों का कर्नाटक की परंपरा पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। कर्नाटक में एक तरफ जहां धार्मिक असहिष्णुता बढ़ती जा रही है, वहीं कुछ धार्मिक संगठन अपनी साझी परंपराएं कायम रखने के प्रयासों के जरिए सभी का ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं। फिर वो चाहे हिजाब प्रतिबंध के विरोध के खिलाफ प्रतिक्रिया हो या फिर मंदिरों में लगने वाले मेलों में मुसलमान कारोबारियों के बहिष्कार के आह्वान का मामला, इनमें राज्य के बेल्लूर शहर स्थित चन्ना के शो मंदिर में होने वाली रस्मों के साथ साथ बेंगलुरु में 300 साल पुराने मंदिर मेले करगा का आयोजन भी शामिल है। दोनों ही जगहों पर हालिया कुछ महीनों से जारी तनाव को दरकिनार कर हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग सदियों पुरानी परंपराओं का उत्सव मनाने के लिए एक साथ जुटे। बुधवार को सैकड़ों धर्मनिष्ठ हिंदू चन्ना के शव मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना के लिए एकत्र हुए। दर्जनों पुजारियों ने पारंपरिक हिंदू धर्म ग्रंथों आगम के मुताबिक अनुष्ठान शुरू किए और विष्णु का एक अवतार चन्ना केशव के सजे धजे रथ को आगे बढ़ाकर रथोत्सव की शुरुआत। लेकिन पूरी रथ यात्रा के दौरान हासन जिले के दुड्डा मेदुर मस्जिद के एक मौलवी सैयद सज्जाद काजी रथ के पहियों के बगल में एक छोटी सी चौकी पर खड़े रहे। उनके सिर पर हरे रंग की पगड़ी बंधी थी और वे कुरान की आयतें पढ़ रहे थे। इसी तरह का नज़ारा इसी माह के शुरू में भी दिखा था, जब कोविड पाबंदियों के कारण 2 साल टलने के बाद पूरे धूमधाम से करगा उत्साह का आयोजन किया गया। करगा पानी से भरी एक मिट्टी की मटकी को कहा जाता है, जिसे शंकु के आकार में फूलों से सजाया जाता है और एक श्रद्धालु इसे अपने सिर पर रख कर चलता है। करगा को आदिशक्ति के रूप में द्रौपदी का एक दिव्य अवतार माना जाता है। श्रद्धालुओं ने हजरत तवक्कल मस्तान बाबा की दरगाह पर रुका कर ये करगा कुछ समय के लिए वहाँ रखा। 8 अप्रैल को शुरू हुए करगा उत्सव की पूर्व संध्या पर इसका आयोजन करने वाले धर्मराय स्वामी मंदिर के पुजारियों का एक दल दरगाह के मुस्लिम मौलवियों के निमंत्रण पर हजरत तवक्कल मस्तान दरगाह पहुंचा था। उत्सव के दौरान दोनों समुदायों के लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं देते और प्रार्थना करते नजर आए और उन्होंने राज्य में जारी धार्मिक तनाव की घटनाओं के बीच एकता कायम रहने की उम्मीदें जताईं। आयोजकों ने मेले की साझी परंपरा बनाए रखने का फैसला ऐसे समय पर किया था जबकि कुछ हिंदुत्ववादी कार्यकर्ताओं की तरफ से दरगाह का पड़ाव छोड़ने की कथित अपील की गई थी। इसी तरह के दावे चन्ना केशव मंदिर के मुख्य पुजारी एस कृष्णस्वामी भट्टर ने भी किए, लेकिन दोनों ने धार्मिक एकता से जुड़ी परंपराओं के पालन को महत्वपूर्ण बताया। भट्टर ने चन्ना केशव मंदिर की परंपरा को सर्वधर्म समभाव और सभी धर्मों के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का परिचायक बताया। माना जाता है कि यह मंदिर 900 साल पुराना है और यहाँ पर यह साझी परंपरा सदियों पहले शुरू हुई थी। भट्टर ने दि प्रिंट को बताया कि यह सदियों पुरानी परंपरा है। उन्होंने कहा कि इसकी शुरुआत वेदांत दर्शन की एक शाखा श्री रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्वैत में निहित मानी जाती है, जो आध्यात्मिकता, विश्वास और मोक्ष के मार्ग में सभी को समानता का संदेश देता है। उन्होंने आगे कहा कि ये वो रास्ता है जो उन्होंने हमें दिखाया था कि हम मुसलमानों को उसी समावेशी परंपरा के एक हिस्से के तौर पर अपने त्योहारों में शामिल करें। करगा का आयोजन करने वाले तिगला समुदाय के एक नेता और कांग्रेस MLC PR रमेश को मीडिया में ये कहते उद्धृत किया गया कि सूफी हजरत तवक्कल मस्तान बाबा हमारे परिवार की देवी द्रौपदी के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने कहा ये उनकी इच्छा थी कि अपने निधन के बाद भी वो हर साल उनके दर्शन कर पाएं, इसलिए शोभा यात्रा समापन वाले दिन कुछ समय के लिए दरगाह पर रुकती है। भट्टर ने बताया कि कुछ हिंदुत्ववादी संगठनों के सदस्यों ने कुछ हफ्ते पहले हमसे संपर्क किया था और हमसे कुरान की आयतें पढ़ने की अनुमति नहीं देने के लिए भी कहा था। उन्होंने कहा कि हमें इस पर सरकार के बंदोबस्ती विभाग की राय लेनी थी। मंदिर के हैंडबुक देखने के बाद विभाग ने हमें इस परंपरा के साथ आगे बढ़ने की अनुमति दी। राज्य के कई प्राचीन मंदिरों की तरह चन्ना केशव मंदिर भी हिंदू धार्मिक धर्मार्थ संस्थानों और बंदोबस्ती या मुजराई विभाग के तहत कर्नाटक सरकार के प्रशासनिक विभाग के नियंत्रण में है। मंदिर की हैंडबुक 1932 से लागू एक मैनुअल है, जिसमें चन्ना केशव मंदिर के संबंध में पूर्ववर्ती मैसूर राज्य प्रशासन की तरफ से मान्यता प्राप्त और अनुमोदित सभी प्रथाओं, अनुष्ठानों, परंपराओं को सूचीबद्ध किया गया है। चन्ना केशव मंदिर की कार्यकारी अधिकारी के विद्युत लता ने दि प्रिंट को बताया कि इस मैनुअल में मंदिर में अपनाई जाने वाली सभी पारंपरिक और ऐतिहासिक प्रथाओं का ब्यौरा है। कुरान की आयतें पढ़ने की परंपरा को भी मैनुअल में शामिल किया गया है। उन्होंने आगे बताया कि ऐसा कहा जाता है कि श्री रामानुजाचार्य ने सभी लोगों को एकजुट रखने के लिए सभी संप्रदायों और समुदायों के लोगों को देवता की पूजा करने का अवसर दिया। यही परंपरा आज भी जारी है। विद्युल्लता ने दावा किया कि हिंदुत्ववादी समूहों की तरफ से उनके कार्यालय से मांग की गई थी कि मंदिर मेले में गैर हिंदू विक्रेताओं को अनुमति नहीं दी जाए। उन्होंने कहा कि गैर हिंदुओं की दुकानें न लगाने का नियम केवल मंदिर के स्वामित्व वाली संपत्तियों पर लागू होता है। हमने गैर हिंदू विक्रेताओं से वहां से दूर रहने को कहा, लेकिन यह उन संपत्तियों पर लागू नहीं होता जो मंदिर के स्वामित्व में नहीं है, और इसलिए गैर हिंदुओं को मंदिर के बाहर दुकानें लगाने की अनुमति दी गई थी। कर्नाटक में धार्मिक समन्वय का एक और उदाहरण बाबा बुदनगिरी गुफा मंदिर है, जिसे आमतौर पर हिंदुत्ववादी नेताओं की तरफ से दक्षिण की अयोध्या कहा जाता है। यह जो हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के लिए एक सम्मानित तीर्थ स्थान है। श्री गुरु दत्तात्रेय स्वामी बाबा बुदन दरगाह के तौर पर इस धार्मिक स्थल का नाम ही इसकी साझी पहचान को दर्शाने के लिए काफ़ी है। त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु और महेश का अवतार माने जाने वाले एक हिंदू देवता गुरु दत्तात्रेय की यहाँ 16वीं शताब्दी के सूफी संत बाबा बुदन और 11वीं सदी के सूफी संत दादा हयात के साथ ही पूजा अर्चना की जाती है। बाबा बुदन शाह के बारे में माना जाता है कि भारत में कॉफ़ी का पौधा वही लेकर आए थे। सुनने के लिए धन्यवाद। हम फिर हाजिर होंगे प्रिंट पॉड के एक नए एपिसोड के साथ।